प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है।
स्वर में प्रभु का जीवित वचन, सृष्टि निर्माता भी है यही वचन। प्यासी आत्मा की भी तृप्ति है यही वचन। स्वर्गीय जीवन रोटी, आंखों की
कार्यक्रम सत्यवचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व की आज का ये अध्ययन आरंभ करें, मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
श्रोता आपको नमस्कार। आशा है आप प्रभु की दया से कुशल हैं और आज के सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। सो आइए अपने कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। इससे पूर्व कि हम कार्यक्रम को आरंभ करें, अपने मनों की तैयारी और आत्मिक सहायता के लिए प्रभु परमेश्वर से सामर्थ मांगें। हम प्रार्थना करें। हे महापराक्रमी जीवित और सच्चे परमेश्वर पिताजी, बड़ी दीनता के साथ हम अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं इन मधुर क्षणों के लिए जो आपने हमको प्रदान किए हैं कि हम आपके सत्य वचन का अध्ययन कर सकें। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस वचन को समझने और ग्रहण करने के लिए हमको समझ और बुद्धि प्रदान करने की कृपा करें। पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचन को हमारे लिए वास्तविक बना दें। हमारे मध्य में यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी रोग से पीड़ित है, किसी समस्या में उलझा हुआ है, किसी घोर पाप में फंसा हुआ है, प्रभु आप उसका छुटकारा करें, उसकी सहायता करें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। हां तो मित्र, आइए अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम पुराने नियम से उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसके 42वें अध्याय को आरंभ करेंगे। 42वें अध्याय में हम जिन मुख्य विषयों को देखेंगे वो इस प्रकार से हैं। याकूब अपने 10 पुत्रों को मिस्र भेजता है। दूसरा विषय होगा शमौन को मिस्र में बंदी बनाकर रखा जाना, शमौन जो याकूब का पुत्र है। तीसरा विषय होगा शेष भाइयों का कनान वापस लौटना। इन तीन विषयों पर हम 42वें अध्याय में विचार करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक के 42वें अध्याय में यूसुफ के जीवन की नाटकीय घटनाओं के रहस्य खुलते दिखाई देते हैं। आरंभ में यूसुफ इन बातों को समझ ना सका था, किंतु उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और सदा आशावादी व्यवहार दर्शाता रहा। उसके विश्वास ने उसे सर्वदा प्रोत्साहित रखा। यूसुफ अब एक विशिष्ट स्थान पर है। सारी पृथ्वी पर अकाल है और लोग यूसुफ के पास भोजन मांगने आ रहे हैं। सो आइए देखें कि कौन कौन है जो यूसुफ के पास भोजन मांगने आता है। उत्पत्ति की पुस्तक के 42वें अध्याय के 1-5 पदों में इस प्रकार से वर्णन है। उत्पत्ति 42 अध्याय 1-5 यहां इस प्रकार से लिखा है, जब याकूब ने अर्थात यूसुफ के पिता ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तब याकूब ने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों ताकते हो? और उसने कहा, देखो मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, तुम वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे कि हम जीवित रह सकें और मर ना जाएं। तब यूसुफ के 10 भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र को गए, परंतु याकूब ने यूसुफ के भाई बिन्यामीन को उसके भाइयों के साथ नहीं भेजा, क्योंकि उसने कहा, कहीं उस पर कोई विपत्ति ना आ पड़े। इसलिए अन्न मोल लेने वाले आने वालों में इसराइल के पुत्र भी थे, क्योंकि कनान देश में भी अकाल पड़ा था। हम देखते हैं कि इन अन्न मोल लेने वालों में इसराइल अर्थात याकूब के पुत्र भी थे। इन पदों में हमने पढ़ा कि याकूब ने अपने 10 पुत्रों को मिस्र भेजा कि वहां से भोजन के लिए अन्न लेकर आए, क्योंकि कनान में भी भयंकर अकाल पड़ा है। जैसा कि हमने 56वें पद में देखा, 41वें अध्याय के 56वें पद में हमने पढ़ा कि जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया तो यूसुफ ने उन सब भंडारों को खोल दिया। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि अकाल सारी पृथ्वी पर था, यह विश्वव्यापी अकाल था और इसने बड़ा भयंकर रूप ले लिया था। कनान में भी इसका रूप बड़ा भयंकर था। हमें यहां इस बात को स्मरण रखना है कि अब अनेक वर्ष बीत चुके हैं। जिस समय उन्होंने यूसुफ को बेचा था उस समय वह 17 वर्ष का किशोर था और अब वह लगभग 37 वर्ष का नवयुवक है। उन्होंने 20 से 21 वर्ष से यूसुफ को नहीं देखा था। जी हां मित्र, एक लंबा समय यूसुफ को देखे हुए बीत चुका था। यूसुफ एक भिन्न प्रकार का व्यक्ति था। वह एक इब्री युवक नहीं रहा था। उसकी दाढ़ी मूछ नहीं थी। अब वह मिस्रियों की तरह अपने बाल मुंडा कर रहता था। वह पूर्णतः बदल चुका था। वह एक बदला हुआ व्यक्ति था। वह एक मिस्री अधिकारी दिखाई देता था। उसकी बोलचाल, पहरावा और व्यवहार एक मिस्री जैसा है। इसलिए याकूब की संतान उसे पहचानने में असमर्थ है। वो उसको पहचान नहीं सके। दूसरा पद विश्वास का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है, जहां याकूब कहता है, और उसने कहा, देखो मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, तुम वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे कि हम जीवित रह सकें और मर ना जाएं। मित्रवर, याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है और उसने इस बात पर विश्वास किया। उसने सुना और विश्वास किया। उसने विश्वास किया कि उसे खाकर, यानी उस अन्न को खाकर हम मरने से बच जाएंगे वरन जीवित रहेंगे। उसने इस विश्वास के अनुसार व्यवहार किया। उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम लोग वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ। मेरे मित्र, यहां पर हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। मनुष्य को मोक्ष दिलाने वाला विश्वास ऐसा ही है। कोई व्यक्ति कहता है, मैं यीशु मसीह पर कैसे विश्वास ला सकता हूं? मेरे मित्र, याकूब भी ऐसा ही कह सकता था। वो कह सकता था कि मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, लेकिन मैं कैसे विश्वास करूं कि मिस्र में अन्न है? विश्वास करने का मार्ग यही है कि उसके अनुसार कार्य किया जाए। याकूब ने सुना तो उस पर विश्वास किया और अपने विश्वास के आधार पर उसने अपने पुत्रों से कहा कि तुम मिस्र में जाओ और वहां से अन्न मोल लेकर आओ ताकि हम जीवित रह सकें, हम मर ना जाएं। मित्रवर, विश्वास करने का मार्ग यही है कि उसके अनुसार कार्य किया जाए। ये व्यवहारिक और परखा हुआ विश्वास कहलाता है। ये प्रमाणित विश्वास है जिसके अतिरिक्त जो विश्वास है वो अंधविश्वास है। यदि हमारा विश्वास प्रमाणित नहीं है तो वह अंधविश्वास है। आज मनुष्य की मोक्ष में यही विश्वास कार्य करता है, उसकी सहायता करता है। परमेश्वर कहता है कि विश्वास द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार है, ये किसी के कार्यों के कारण नहीं। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति घमंड करे। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति ये सुनता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया है, वो मेरे लिए मारा गया है, गाड़ा गया है और परमेश्वर ने उसको तीसरे दिन मृतकों में से जीवित किया है, ये विश्वास यदि व्यवहार में नहीं लाया जाता तो उसको कोई लाभ नहीं होता। वो विश्वास कर अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंपता है, तभी उसको उद्धार प्राप्त होता है। प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक के 16वें अध्याय के 31वें पद में पवित्र बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू उद्धार पाएगा। आपने कुछ सुना और फिर उस पर विश्वास किया, यही कार्य बूढ़े याकूब ने भी किया और इस प्रकार उसने मिस्र से अन्न प्राप्त किया और अकाल के समय जीवित रहा। मेरे मित्र, यदि आप इस नियम को आत्मिक क्षेत्र में लागू करते हैं तो आप भी इस भयंकर समय में, जबकि आत्मिक अकाल पड़ा हुआ है, आप जीवित रहेंगे। न केवल इस पृथ्वी पर वरन आप अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, अनंत काल तक जीवित रहेंगे। तब 6 से 14 पदों में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उत्पत्ति 42 अध्याय 6 से 14 पद, यूसुफ उस देश का शासक था, वही उस देश के सब लोगों को अन्न बेचता था और यूसुफ के भाई आए और उन्होंने भूमि पर झुककर उसे दंडवत किया। इस पद पर ध्यान दीजिए, यूसुफ के भाई आए और उन्होंने भूमि पर झुककर उसे दंडवत किया। आपको स्मरण होगा कि यूसुफ ने इसी प्रकार के स्वप्न देखे थे और यहां पर वो स्वप्न पूरे होते दिखाई देते हैं। तब 7वें पद में लिखा है, जब यूसुफ ने अपने भाइयों को देखा तो उनको पहचान गया, परंतु उनके सामने अनजान बनकर उनसे कठोरता से बोला और उसने उनसे कहा, तुम कहां से आए हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम तो कनान देश से अन्न मोल लेने को आए हैं। परंतु यूसुफ ने तो अपने भाइयों को पहचान लिया था, यद्यपि उन्होंने उसे न पहचाना। तब यूसुफ ने उन स्वप्नों को स्मरण करके जो उसने उनके विषय में देखे थे उनसे कहा, तुम जासूस हो, तुम हमारे देश की दुर्दशा को देखने को आए हो। तब उन्होंने उससे कहा, नहीं हे स्वामी, तेरे दास तो अन्न मोल लेने आए हैं, हम सब तो एक ही पुरुष के पुत्र हैं, हम तो ईमानदार मनुष्य हैं, तेरे दास जासूस नहीं है। फिर भी उसने उनसे कहा, नहीं, तुम तो हमारे देश की दुर्दशा देखने आए हो। परंतु उन्होंने कहा, हम तेरे दास 12 भाई हैं और कनान देशवासी एक ही पुरुष के पुत्र हैं, और देख, सबसे छोटा इस समय हमारे पिता के पास है और एक जाता रहा। यूसुफ ने उनसे कहा, मैंने तुमसे ठीक ही कहा, तुम जासूस हो। मित्रवर, मैंने 14वीं आयत तक आपके सामने पढ़ा है। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। यहां पर हम देखते हैं कि यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, किंतु उसके भाइयों ने उसे ना पहचाना। ये यूसुफ हो सकता है, ऐसी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यूसुफ अपने छोटे भाई से भी संपर्क करना चाहता था, जो कि उसकी माता राहेल से जन्मा था, और इसलिए उसने एक चाल चली सो आइए देखें कि यूसुफ क्या युक्ति बनाता है। 15वें पद से देखिए, तुम इस प्रकार जांचे जाओगे। यूसुफ ने उनसे कहा, मैंने तुमसे ठीक ही कहा, तुम जासूस हो, तुम इस प्रकार जांचे जाओगे फिरौन के जीवन की शपथ, जब तक तुम्हारा सबसे छोटा भाई यहां ना आए तुम इस स्थान से ना जाने पाओगे। अपने में से एक को भेजो कि वह जाकर तुम्हारे भाई को ले आए, और तुम कैद में रहोगे, जिससे तुम्हारे कथन की जांच हो सके कि तुम में सच्चाई है कि नहीं। परंतु यदि नहीं तो फिरौन के जीवन की शपथ, तुम निश्चय ही जासूस ठहरोगे। अतः उसने उन्हें 3 दिन तक बंदी गृह में डाल रखा। फिर आगे हम पढ़ते हैं 18वें पद से आगे, तब तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो तभी जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। यदि तुम सच्चे मनुष्य हो तो तुम में से एक भाई बंदी गृह में रहे, शेष तुम सब अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए अन्न ले जाओ, और अपने सबसे छोटे भाई को मेरे पास ले आओ, जिससे तुम्हारी बातें सच प्रमाणित हों और तुम मार डाले ना जाओ। और उन्होंने ऐसा ही किया। तब उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ाकर विनती की, हमने उसकी मानसिक पीड़ा को देखा, फिर भी उसकी ना सुनी, इसलिए ये संकट हम पर आ पड़ा है। तब रूबेन ने उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे ना कहा था, इस लड़के के विरुद्ध पाप ना करो, परंतु तुमने ना सुना, अब उसके खून का पलटा हमसे लिया जा रहा है। वे तो नहीं जानते थे कि यूसुफ ने हमारी बातें समझ ली हैं, क्योंकि उनके बीच में एक दुभाषिया था। मित्रवर, इन पदों में हम देखते हैं कि यूसुफ के भाई अपने पापों का अंगीकार करते हैं। उनको ये स्मरण आता है कि हमने अपने भाई यूसुफ के साथ, जो निर्दोष था, उसके साथ बुराई की है। हमने उसको सताया, उसको कष्ट दिया और उसे बेच दिया। उनके विचार से तो यूसुफ इस पृथ्वी पर नहीं है, वो मर चुका है। वे लोग तो अपनी इब्रानी भाषा में अपने पापों का अंगीकार कर रहे थे और सोच रहे थे कि यूसुफ उनकी बोली नहीं समझ रहा होगा, क्योंकि यूसुफ तो जानबूझकर उनसे दुभाषिये के द्वारा मिस्री भाषा में बात कर रहा था, यद्यपि वो इब्रानी भाषा को जानता था, बोलता था, किंतु वह उनके समक्ष स्वयं को प्रकट नहीं करना चाहता था। मेरे मित्र, पाप के धब्बे बड़े गहरे होते हैं, दोष की भावना कभी भी समाप्त नहीं होती, चाहे पाप करने के पश्चात कितना लंबा समय क्यों ना बीत गया हो, दोष की भावना समाप्त नहीं होती। 20-21 वर्ष पश्चात भी उन भाइयों का पाप उनके सामने बना हुआ है। वह उसे अपने मानस पटल के पर्दे पर स्पष्ट रूप में देख सकते हैं। उन्हें इस बात का आभास हुआ कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है वह परमेश्वर की ओर से उनके पाप का दंड है, जैसा कि वो यहां पर स्वीकार करते हैं 22वें पद में। तब रूबेन ने उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे ना कहा था, इस लड़के के विरुद्ध पाप ना करो, परंतु तुमने ना सुना, अब उसके खून का पलटा हमसे लिया जा रहा है। तो इस प्रकार से वो इस बात पर ध्यान करते हैं कि हमारा पाप हमारे सिर पर है और परमेश्वर उस पाप का दंड आज हमें दे रहा है। 24वें पद से आगे हम देखें, इस प्रकार से लिखा हुआ है, और वह उनके पास से हट गया और रोया, परंतु जब वह उनके पास लौटा तो उनसे बातचीत करके उनमें से शमौन को अलग किया और उनकी आंखों के सामने उसे बंदी बना दिया। मित्रवर, हम यहां पर इस 24वें पद में देखते हैं कि यूसुफ उनकी सारी बात को सुनता है। वो उन पर क्रुद्ध नहीं हुआ, उसने ऐसा विचार नहीं किया कि अब पलटा लेने का समय है, मैं इनके साथ पलटा ले सकता हूं। किंतु मेरे मित्र, यूसुफ उनके पास से हट गया और बहुत रोया, क्योंकि वे उसके भाई थे, उसका अपना खून थे, वो एक ही पिता से जन्मे थे, और इसलिए यूसुफ के हृदय में उनके लिए प्रेम है और वो प्रेम जागृत हो उठता है। जब वह उसके पास से लौट गया तो उनसे बातचीत करके उसने शमौन को उनमें से अलग कर लिया और बाकी को उन्होंने शेष लोगों को बंदी बना लिया। अग्रिम पद में देखते हैं, तब यूसुफ ने आदेश दिया कि उनके बोरे अन्न से भर दिए जाएं और उनमें से प्रत्येक का रुपया उसी के बोरे में रख दिया जाए और उनकी यात्रा के लिए भोजन वस्तु भी दी जाए, और उनके लिए ऐसा ही किया गया। और इस प्रकार उन्होंने अपना अन्न अपने गधों पर लादा और वे वहां से चल दिए। सराय में जब एक ने अपने गधे को चारा देने के लिए अपना बोरा खोला तो उसने अपना रुपया देखा, और देखो रुपया उसके बोरे के मुंह पर ही रखा था। तब उसने अपने भाइयों से कहा, मेरा रुपया लौटा दिया गया है, और देखो वो तो मेरे बोरे में ही है। तब उनके जी में जी न रहा और वे भयभीत होकर एक दूसरे को ताकने और कहने लगे, ये क्या है जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया है। जब वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास आए तो जो कुछ उनके साथ हुआ था वह सब कह सुनाया। उन्होंने कहा, जो पुरुष उस देश का स्वामी है उसने हमसे कठोरता से बातें की और हमें जासूस समझा, परंतु हमने उससे कहा, हम तो सच्चे मनुष्य हैं, हम जासूस नहीं। हम 12 भाई एक ही पिता के पुत्र हैं, जिनमें से एक नहीं रहा, और सबसे छोटा इस समय कनान देश में हमारे पिता के पास है। मित्र, यूसुफ ने देखा कि उसके भाई वास्तव में पछता रहे हैं। वो भावुक हो उठा, चाहता तो था कि चिल्लाकर उनके गले से लग जाए और कहे, हे मेरे भाइयों, मैं यूसुफ हूं। हां, वही यूसुफ जिसे तुमने व्यापारियों के हाथ बेच दिया था, किंतु ऐसा करने से वह अपने छोटे भाई को नहीं पा सकेगा। इसलिए उसने अपने आप को संभाला और मुंह धोकर पुनः उनके पास आया कि उन पर कुछ प्रकट ना हो। उसने शमौन को बंधक व्यक्ति के रूप में रोक लिया, शेष भाइयों को उसने भेज दिया ताकि वो अपने परिवार को अन्न दे सकें कि वे इस अकाल के समय जीवित रहें, मर ना जाएं। मित्रवर, यूसुफ ने न केवल उन्हें भोजन दिया वरन उनका पैसा भी वापस दे दिया। आज भाई भाई एक दूसरे को ठगता है, उसका अधिकार छीनता है, भाई भाई से भी घूस लेने में नहीं चूकता, किंतु यूसुफ संसार के भाइयों के समक्ष एक महान उदाहरण है। यूसुफ अपने भाइयों को अनाज मोल दे, ऐसा उससे कभी नहीं हो सकता था। यूसुफ के भाई लोग अपने बीते हुए पाप के कारण स्वयं को इतना दोषी समझ रहे हैं कि भलाई भी उन्हें परमेश्वर का दंड प्रतीत हो रही थी, जैसा कि 28वें पद में हमने पढ़ा, जहां लिखा है, तब उसने अपने भाइयों से कहा, मेरा रुपया लौटा दिया गया है, और देखो वो तो मेरे बोरे में ही है। तब उनके जी में जी ना रहा और वे भयभीत होकर एक दूसरे को ताकने और कहने लगे, ये क्या है जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया है। घर पहुंचकर उन्होंने सारी बातें अपने पिता को बताई और ये भी बताया कि उस व्यक्ति ने शमौन को रोक लिया है और बिन्यामीन को मिस्र बुलाया है, इसी शर्त पर वह अगली बार हमें अन्न देगा और शमौन को रिहा करेगा। तब अग्रिम पदों में पढ़ते हैं, 35वें पद को देखिए, वरन 33वें पद को देखिए, जहां इस प्रकार से लिखा है, और उस पुरुष ने जो उस देश का स्वामी है हमसे कहा, मैं इससे जान लूंगा कि तुम सच्चे मनुष्य हो कि तुम अपने एक भाई को मेरे पास छोड़ दो और अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए अन्न ले जाओ, परंतु अपने सबसे छोटे भाई को मेरे पास ले आओ कि मैं जान सकूं कि तुम जासूस नहीं परंतु सच्चे मनुष्य हो। मैं तुम्हारे भाई को तुम्हें लौटा दूंगा और तुम इस देश में लेन देन कर सकोगे। तब ऐसा हुआ कि जब वे अपने अपने बोरे खाली कर रहे थे तो क्या देखा कि प्रत्येक जन के रुपए की थैली उसी के बोरे में रखी है, और जब उन्होंने और उनके पिता ने रुपयों की थैलियां देखी तो वे अत्यंत डर गए। और उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, तुमने मुझे मेरे बच्चों से वंचित कर दिया, यूसुफ नहीं रहा और शमौन भी नहीं रहा, और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाओगे, ये सब विपत्तियां मुझ पर आ पड़ी हैं। तब रूबेन ने अपने पिता से ये कहा, यदि मैं उसे तेरे पास वापस लौटाना ले आऊं तो तू मेरे दोनों पुत्रों को मार डालना, उसे मेरे हाथ में सौंप दे और मैं उसे फिर तुझे लौटा दूंगा। परंतु याकूब ने कहा, मेरा पुत्र तुम्हारे साथ न जाएगा, क्योंकि उसका भाई मर गया है और अब वह अकेला ही बचा है। यदि तुम्हारी यात्रा में उस पर कोई विपत्ति आ पड़े तब तो तुम मुझ पके बाल वाले को शोक के साथ अधोलोक में उतार दोगे। मित्रवर, याकूब एक आशावादी व्यक्ति नहीं था। वो एक बार इन बेटों के चक्कर में अपने प्रिय पुत्र यूसुफ को खो चुका है, और इन्हीं की खबर लेने तो उसने यूसुफ को भेजा था, और आज तक यूसुफ वापस नहीं लौटा, और अब वे बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हैं। याकूब ने अपने पिछले कटु अनुभव के आधार पर उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। याकूब कहता है, ये सब विपत्तियां मुझ पर आ पड़ी हैं, अर्थात ये सब कुछ मेरे विरुद्ध हो रहा है, किंतु यूसुफ ने ऐसा कभी नहीं कहा। वो रोमियो की पत्री के 8वें अध्याय के 28वें पद के अनुसार प्रत्येक परिस्थिति का स्वागत करता रहा। चूंकि प्रेरित पौलुस फिलिप्पियों की पत्री के 1वें अध्याय के 6वें पद में बताते हैं कि मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही इसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मित्रवर, यूसुफ और याकूब के दृष्टिकोण में बड़ा अंतर था। यूसुफ एक आशावादी व्यक्ति था, परंतु याकूब निराशावादी था। ये दोनों व्यक्ति कलीसिया में दो प्रकार के विश्वासियों का चित्र दर्शाते हैं, किंतु परमेश्वर हमारे अविश्वास का उपचार करता है। हम देखेंगे कि याकूब भी धीरे धीरे अपने विश्वास में बढ़ता है, वो परमेश्वर पर निर्भर करता है, और उसका व्यवहार भी आशावादी और उत्साह से भरा हुआ दिखाई देता है।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। प्रिय श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको लाभ पहुंचा होगा। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की है और इसके द्वारा आपको आत्मिक आशीष मिली है। यदि आज के कार्यक्रम से संबंधित आपके हृदय में कोई प्रश्न या संदेह है तो आप हमें इस पते पर अवश्य लिखकर भेजें। इस विषय में हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। हमारा पता है, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।